Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om. Adi Guru भगवान शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी का प्रसंग चल रहा है। 29वां श्लोक अभ्यास के लिए 29वां श्लोक। तत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वं चिन्तयाम्यन्वहम् त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो वीक्ष्यामि दिशचाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थितां शंभो लोकगुरो मदीय मनस सौख्योपदेशं कुरु वस्त्रोद्धूतविदौ सहस्रकरता पुष्पार्चने विष्णुता गन्धे गन्धवहात्मतान्नपचने बर्हिर्मुखाध्यक्षता पात्रे काञ्चनगर्भतास्ति मयि चेद् बालेन्दुचूडामणे शुश्रूषां करवाणि ते पशुपते स्वामिन् त्रिलोकी गुरो नालं वा परमोपकारकमिदं तेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगतान् चराचरगणान् वाह्यस्थितान् रक्षितुम् सर्वां मर्त्यपलायनौषधमज्जित ज्वालाकरं भीकरं निक्षिप्तं गरलं गले न गलितं नोदीर्णमेव त्वया ज्वालोग्र सकलामरातिभयद क्ष्वेलः कतं वा त्वया दृष्ट किं च करे धृतः करतले किं पक्वजाम्बूफलम् जुह्वायां निहितश्च सिद्धपुटिगुटिका वा कण्ठदेशे भृतः किं ते नीलमणिर्विभूषणमयम् शम्भो महात्मन् वद नालं वा सकृदेव देव भवत सेवान्नतिर्वानुति पूजा वा स्मरणं कथा श्रवणत्मम् आप्यालोकं मा दृशाम् स्वामिन्नस्थिरदेवतानुसरणा यासेन किं लभ्यते का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत् किं प्रार्थनीयं तदा त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमम् त्वं चिन्तयाम्यन्वहम् त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो वीक्ष्यां मे दिशचाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थितां शम्भो लोकगुरो मदीय मनसः सौख्योपदेशं कुरु। आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहते हैं, ईशा, यह संबोधन है ईशा। इस श्लोक में तीन संबोधन है। पहला संबोधन है ईशा, दूसरा संबोधन है विभो और तीसरा संबोधन है लोक गुरु। ये तीनों संबोधन भगवान शिव के लिए, परमात्मा के लिए महत्वपूर्ण है। ईश शब्द का अर्थ होता है मालिक। उसके ऊपर कोई दूसरा शासक नहीं है, उसका नियंत्रक कोई नहीं है। जो सबका नियंत्रक है लेकिन उसका नियंत्रक कोई नहीं है, उसको ईशा कहते हैं। और ये ईश शब्द द्वारा ही भगवान शिव का ऊर्ध्वमुख ईशान हुआ है। ज्ञानी ही शासन कर सकता है वास्तव में। आजकल तो मूर्ख लोग शासन कर रहे हैं, इसलिए शासन तंत्र गड़बड़ा रहा है। हमारे नीतिकारों ने कहा है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धस्य कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास ज्ञान है, वास्तव में वही शक्तिशाली है। बुद्धि का बल ही बल माना जाता है। बुद्धि यदि नहीं है तो शारीरिक बल या बाकी बल, धन का बल, पद का बल, जन का बल, जन बल, धन बल और तन बल, ये आत्मघातक होंगे यदि बुद्धि नहीं है तो। और यदि बुद्धि है तो न तन बल की आवश्यकता है, न जन बल की आवश्यकता है, न धन बल की आवश्यकता है। बुद्धि बल सर्व बल में प्रधान बल है, और वही विचारवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान व्यक्ति के पास जो है, उसी बल के द्वारा वो शासन करता है तो सभी व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए भगवान शिव को ईशः संबोधन किया। सामवेदी ये पहले मंत्र ही है, ईशावास्य उपनिषद। ईशम भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि ईशनाथ ईशम, उसका नाम ईश क्यों पड़ा, तो क्योंकि सबका शासन करता है इसलिए वह ईश है। और भगवान शिव शासन कैसे करते हैं, तो बुद्धि बल से शासन करते हैं, इसलिए भगवान शिव का ज्ञान बल ही सर्व शासन करने में सामर्थ्यता प्रदान करता है। इसलिए ईशान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान मुख। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर, सर्व विद्यानाम ईश्वर वही ईशान है। समस्त विद्या का जो ईश्वर होगा तो वह तो ब्रह्म विद्या ही होगी, ज्ञान ही होगा, आत्मज्ञान ही होगा। तो उस अर्थ में यहां ईशा ये संबोधन शंकराचार्य जी बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव को कहा कि हे ईशा। दूसरा संबोधन है विभो। विभो शब्द व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और संबोधन में विभो, हे विभो शब्द है विभो, और संबोधन में विभो बनता है। तो विभु माने व्यापक, सर्वत्र जिसका अन्वय होता हो, जिसका व्यतिरेक कहीं भी संभव न हो, उसी को विभु कहते हैं। और जहां एक जगह भी जिसका व्यतिरेक संभव होगा तो उसको विभु नहीं कह पाएंगे। सामान्य लौकिक दृष्टि से शास्त्र में हम लोग आकाश को विभू कहते हैं, लेकिन ये आकाश परमात्मा जैसा व्यापक नहीं है, ये आंशिक व्यापक होने के कारण उपमित किया जाता है परमात्मा को, आकाश की उपमा दी जाती है, उपमा एक अंश में दी जाती है। परिच्छिन्न व्यापक है ये आकाश, परिच्छिन्न माने इस मर्त्यलोक में व्यापक है आकाश, मर्त्यलोक में तो व्यापक है इस आकाश की गति, मर्त्यलोक के बाद स्वर्ग में इस आकाश की गति नहीं है। ये नहीं समझ लेना कि इसी भौतिक भूताकाश के अंदर स्वर्गलोक भी होगा, ऐसा नहीं समझ लेना। स्वर्गलोक के स्वर्ग के आकाश अपने ही ढंग का है, स्वर्गलोक की भूमि धरती वो अपने ही ढंग की है, स्वर्गलोक का जल अपने ही ढंग का है, इसलिए स्वर्गलोक के प्राणी वो अपने ढंग के हैं, तुम्हारे हमारे जैसे स्वर्गलोक के प्राणी नहीं है। ये जितने भी लोक लोकांतर हैं, हैं सब प्राकृत, ये सभी लोक लोकांतर हैं तो प्राकृत, प्रकृति जन्य है, ये समष्टि प्रकृति जन्य है, जिस प्रकृति से मर्त्यलोक बना है उसी प्रकृति से स्वर्गलोक बना है। लेकिन ये मर्त्यलोक का जो आकाश है वो अपना आकाश है, स्वर्गलोक का आकाश अपना आकाश है, ब्रह्मलोक का आकाश अपना ही आकाश है, गंधर्वलोक का आकाश अपना ही आकाश है भाई। तो आकाश शब्द फिर भी हम व्यापक कहते हैं आकाश को, मर्त्यलोक में व्यापक व्याप्त होकर रहने के कारण उसको हम उपमा देकर कह देते हैं कि आकाशवत सर्वगतम च नित्यम। आत्मा कैसा है? बोले आकाश की तरह सर्वगत है, और अन्य भूतों की अपेक्षा आकाश बहुत नित्य है, ज्यादा नित्य है, अन्यथा तो आकाश जैसा नित्य परमात्मा नहीं है। आकाश भी नाशवान है, मर्त्यलोक जब नाश होगा महाप्रलय में तो आकाश भी नष्ट हो जाएगा, आकाश आकाश नहीं रहेगा, जल जल नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सब आकाश तो पंजीकृत है, भूत आकाश है, और ये आकाश कहां जाएगा महाप्रलय में? तो अपनी शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाएगा, तो केवल शब्द तन्मात्रा रहेगा, आकाश नहीं रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा। इसी तरह जल कहां चला जाएगा? तो रस तन्मात्रा में चला जाएगा, क्योंकि अपना कार्य हमेशा अपने कारण में ही लीन होता है, जिस उपादान कारण में, जिस कारण में कारण से पैदा हुआ उसी कारण में लीन होने के कारण उसको उपादान कारण बोलते हैं। उसके प्रकट्य अभिव्यक्ति से पहले वह है, प्राकट्य के बाद भी रहेगा और नाश के बाद भी रहेगा वो, इसके बावजूद वह किसी का कारण बनता है तो वह कारण उपादान कारण होता है। तो गीता के साथ में अध्याय का प्रसंग आजकल सुबह चल रहा है, ओता प्रोता सूत्रे मणिगणा युवा, ये प्रसंग इसी श्लोक की व्याख्या चल रही है आजकल, तो ये सब प्राकृत है। फिर भी आग परमात्मा को समझने के लिए विभू कहा, विभू, विभू माने व्यापक, जैसे वस्त्र में सूत व्यापक है या कपास व्यापक है, सर्वत्र अनुगत है, कपास की उपस्थिति न हो दुनिया में ऐसा कोई वस्त्र नहीं है, वस्त्र हो फिर भी कपास की उपस्थिति न हो दुनिया में कोई वस्त्र संभव नहीं है, कपास हो लेकिन वस्त्र की उपस्थिति न हो संभव है, इसीलिए वस्त्र व्यापक नहीं हो सकता कपास की अपेक्षा से, और कपास वस्त्रों की अपेक्षा व्यापक है, हर वस्त्र में उसकी उपस्थिति है। इसी तरह मृत्तिका और घट के बारे में विचार करो तो पृथ्वी में यावत मृत्तिका में घट विद्यमान नहीं है, लेकिन यावत घट में मृत्तिका विद्यमान है, तो हम घट को व्यापक नहीं कर सकते, विभो नहीं कर सकते, लेकिन मृत्तिका को हम व्यापक या विभू कह सकते हैं।
एक ही घड़े में भी घड़े के यावत अंग प्रत्यंग में जहां भी हम स्पर्श करेंगे उस घड़े के समग्र अस्तित्व में मिट्टी विद्यमान होने के कारण घट में मिट्टी व्यापक है। लेकिन ये घड़े में व्यापक है तो यावत घड़े में भी व्यापक है, लेकिन यावत मृत्तिका में घट विद्यमान नहीं है। जो मिट्टी हम छूते हैं उसमें घड़ा ही होगा, ये अनिवार्य नहीं है। बिना घट का भी मृत्तिका रह सकता है, लेकिन बिना मृत्तिका घट का अस्तित्व तो नहीं है। इसलिए यदि मृत्तिका, यदि घट मृत्तिका को संबोधन करना पड़े तो मृत्तिका मृत्तिका को विभो कह देते हैं, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसी तरह संसार में यावत जितने भी प्राणी हैं, भूत चराचर जितने भी हैं, जड़ चैतन्य स्थावर जंगम व्यक्ता व्यक्त सारे वस्तुओं में व्यक्तियों में शिव तत्व व्यापक होने के कारण, अस्तित्व में होने के कारण परमात्मा को विभु ये संबोधन शंकराचार्य जी कर रहे हैं। और तीसरा संबोधन है लोक गुरु। दूसरे श्लोक में त्रिलोकी गुरु, तीनों लोक के गुरु हैं भगवान शिव। लोक गुरु का अर्थ केवल मर्त्यलोक का गुरु होंगे भगवान शिव, ऐसा नहीं समझ लेना। त्रिलोकी गुरु, तीनों लोक के वो गुरु हैं। इसीलिए उनके तीन नेत्र हैं भाई। एक एक लोक में एक एक चक्षु द्वारा एक एक लोक को शिक्षित करना है, इसीलिए तो तीन नेत्र हैं। इसकी व्याख्या फिर करेंगे। यहां शिव का संबोधन है लोक गुरु, और ये प्रासंगिक भी है लोक गुरु, उपनिषद संबोधन है ये, क्योंकि भगवान शिव तीनों लोक के गुरु हैं। ये बात महर्षि पतंजलि भी खुद अपने मुख से कहते हैं। योग दर्शन के आचार्य, योग सूत्रों के रचनाकार महर्षि पतंजलि भी शिव को तीनों लोक के गुरु, लोक गुरु कहते हैं। एक सूत्र की रचना कर दी है, स पूर्वेशम अपि गुरु हु कालेन अनवच्छेदात। भगवान शिव तो पूर्व पूर्वों के जितने भी गुरु हुए हैं उन सभी गुरुओं का भी गुरु है। और वही उनकी जो गुरुत्व है, गुरुपना है, और उनकी दी हुई जो दिव्य उपदेश हैं, वही आज तक अपने अपने वर्तमान गुरुओं में भी वही विद्या, वही शिक्षा कालेन अनवच्छेद, बीच में कहीं प्रतिबंधक हुए बिना वो प्रवाह के रूप में वही विद्या, वही शिक्षा, वही उपदेश जो शिव ने सबसे पहले सनत कुमारों को दी थी, वही विद्या आज हम लोगों को हमारे प्रत्यक्ष गुरु देते हैं। इसलिए उसको कहा स शिव परमात्मा पूर्वेशम, पहले पहले के जितने गुरु हुए हैं उन सब गुरुओं के भी वो गुरु है। पूर्वेशम अपि गुरु हु कालेन अनवच्छेदात। लोक गुरु के बारे में छांदों के उपनिषद का वो प्रसंग बड़ा सांदर्भिक है। भगवान शिव लोक गुरु हैं, पूर्वेशम अपि गुरु हैं। छांदों के उपनिषद का वो प्रसंग बड़ा सांदर्भिक है। आप लोगों ने कई बार सुना है प्रसंग। सनत कुमार जन्मनः, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, वो प्रारब्ध जन्य पुत्र नहीं है, कर्मजन्य नहीं है, मानस जन्म है, संकल्प से पैदा हुए थे सनत कुमार। लेकिन संकल्प से पैदा होने पर भी वह शरीरधारी थे, देहधारी थे, और उन्होंने क्योंकि वृद्धरेत थे, पूर्व पूर्व जन्मों के वैराग्य आदि साधना को वह योग भ्रष्ट के रूप में, मानस जन्म के रूप में वह सृष्ट हुए थे, पैदा हुए थे, और इसीलिए पूर्व संस्कार उनके पास विद्यमान थे। तो जन्मना उनको एषणात्रय से विनिर्मुक्त हो गए। जन्मना लोकेषणा पुत्रेषणा वित्तेषणा उनकी नहीं रही, क्योंकि पूर्व जन्म के जो श्रवण का फल था, पूर्व जन्म के वैराग्य का फल था, पूर्व जन्म के मुमुक्षु का फल था, जन्मांतर के मुमुक्षा का फल था, उर्धरेत हो गए। ब्रह्म विद्या पहले जन्म में श्रवण की थी, उपनिषद औपनिषद विद्या पूर्व जन्म में उन्होंने श्रवण की थी, वही संस्कार लेकर जन्म पैदा हुए थे, तो वो संस्कार यथावत विद्यमान था। उसका परिणाम क्या हुआ? पैदा होते ही ब्रह्मचर्चा में लग गए। पैदा होते ही सनत कुमार किसमें लग गए? ब्रह्मचर्चा में। हम तो मरने के दिन आने के नजदीक है तो भी ब्रह्मचर्चा में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, फिर भी पूछते हैं महाराज इस जन्म में हमारी मुक्ति होगी कि नहीं, आके पूछते हैं हमसे। हो तो हम कह देते हैं कि हमारे कहने से मुक्ति हो जानी हो तो तुम अब भी मुक्त हो जाओ, है? तो क्योंकि मुक्ति किसी के कहने से होने वाली चीज नहीं है, वो मुक्ति अपनी साधना और अपनी अवस्था पर अपनी भूमिका पर निर्भर करता है कि साधक अपनी साधना किस अर्थ में किस अंश में वह साधना के भूमिकाओं में आरूढ़ हुआ है उस पर निर्भर करता है मुक्ति है। तो हमसे पूछते हैं बहुत से लोग तो हमको हाँ इस जन्म में हमको मोक्ष मिलेगा कि नहीं महाराज, तो हम कह देते हैं हम ज्योतिष भी नहीं है और भविष्य वक्ता भी नहीं है, है? हमको तो वर्तमान में क्या होने वाला यही पता नहीं है, है? हमको तो यही पता नहीं है कि आज शाम को किस चीज की सब्जी मिलेगी, तुम लोगों को पता है? है? तो हम काहे को सर्वज्ञ हो गए भाई, है? हम कैसे बताएंगे तुम्हारी मुक्ति होगी कि नहीं? हमको तो पता नहीं आज शाम को किस चीज की सब्जी मिलेगी, जब थाल में आएगा तभी पता चलेगा कि हाँ इस चीज की सब्जी है। हाँ ये जरूर है कि रोटी के बारे में हमको शंका नहीं है, गांव की ही रोटी मिलेगी, लेकिन ये भी भरोसा नहीं है, पंजाब की तरफ हो तो कभी मक्के की रोटी मिल जाए, आशा करो गांव की रोटी मिलेगी और मक्के की रोटी आ जाए, आशा करो मक्के की रोटी तो मिस्सी रोटी आ जाए। पंजाबी लोग मिस्सी रोटी खूब खाते, मक्का की रोटी को मारवाड़ी लोग भी मिस्सी की रोटी को मिस्सी रोटी है, गेहूं चना मिलाकर मारवाड़ियों में जाते हैं तो हमेशा मिस्सी रोटी खाते हैं, पंजाबियों में जाते हैं तो मक्की दी रोटी सरों दा साग फेमस है, उनके डायलॉग ही बहुत प्रसिद्ध है। हमको तो यही पता नहीं हम सर्वज्ञ कहां से हैं, ज्ञानी कहां से हैं भाई। एक बार हमारे सामने बड़े संकट आ गया था दिल्ली में, बहुत पहले की बात है, आजकल तो दिल्ली जाना भी बंद हो गया, बहुत पहले हम कथा करने जाते थे दिल्ली में अशोक विहार एरिया है, तो वहां वेदनाथ महादेव मंदिर हमारे गुरु महाराज की प्रेरणा से हमारे भक्तों ने महाराज जी के भक्तों ने बनाया शिव मंदिर, नित्य सत्संग चलता है, तो वहां कथा करने के लिए गए तो प्रवचन समाप्ति के बाद एक माता जी ने कहा, पंजाबी माता जी थी, तो माता जी ने कहा कि महाराज आपसे मिलकर कुछ चर्चा करनी है।